اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ہر فرقہ اپنے آپ کو اس مسلک پہ کہتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ نجات پائے گا. آج دیکھیے وہ حدیث کتنی مس کوٹ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے 73 فرقے ہو جائیں گے 73 اور اس میں سے ایک ناجی ہوگا, نجات پانے والا, سیفٹ سیکٹ ہوگا, اور 72 جب وہ ناری ہوں گے آگ میں جانے والے. صحابہ کرم کو فوراً غم لگ گیا, اللہ کے نبی وما ہوں, وہ کون ہوں گے؟ کہا وما انا علیہ واصحابہ, وہ اس پہ ہوں گے جس پہ میں اور میرے صحابہ. اب لوگ, ہر بندہ اس حدیث کو کوٹ بھی کرتا ہے اور نیچے چپکے سے لکھ دیتا ہے کہ یہ بس فرقہ ہمارا ہی ہے. ہماری سوچ سیدھی قرآن اور سنت, قال اللہ وقال الرسول. اس زبان سے, اس جگہ سے اب کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ کچھ نہیں سنیں گے. اس میں فرق ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے, لیکن جب آپ اپنی نسبت پیچھے ہٹا لیتے ہیں تو بات کیسے بنتی ہے؟ مثال دیکھیے, اگر آپ بورڈ پہ رکھیں کچھ, میں آپ کو چیز دکھاؤں کہ ایک چیز یہاں ہے, یہاں سے شروع ہوئی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, سب سے اوپر ٹاپ کلاس, یہ ابو بکر کا, یہ عمر کا, یہ عثمان کا, چلتے تھے یہاں, سمجھیں کہ پہلے امام ہے نا, امام ابو حنیفہ, اور یہاں نیچے ہم کھڑے ہیں, ہم یہاں سے اوپر چڑھے, ہم یہاں پہ رک گئے. تو بتائیے جو بیچ کے لوگ تھے یہ کس دور پہ تھے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک مسلک کو اپنانا لازمی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے جو اللہ کے نبی تک کے جو دور کے لوگ تھے وہ کس مسلک پہ تھے, پہلی بات. دوسری بات, آپ یہاں کیوں رکتے ہیں؟ بیچ کا جو دور ہے, آپ کوئی بھی چیز لیں پیور کہاں سے ملے گی؟ جہاں سے وہ نکلتی ہے. آپ کو پیور گولڈ چاہیے تو آپ ان مائنس میں جائیں گے جہاں سے گولڈ نکل رہا ہے. آپ کو دودھ چاہیے, بھینس کا دودھ بھینس کے قریب سے خالص ملے گا نا, کوئی شک ہی نہیں کہ اس میں کسی نے کچھ ڈالا, آپ نے اس کے تھنوں سے نکالا اور آپ نے کہا یہ لیجیے یہ خالص دودھ ہے. آپ اس کے بعد کسی دکان پہ لاتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی کچھ نہ ڈالے, فضا سے اوپر کچھ مٹی گر جائے, ہو سکتا ہے کہیں کیڑا گر جائے, ہو سکتا ہے وہاں پانی ڈل جائے, ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ نکلے. ہم نہیں کہتے کوئی کرتا ہے, لیکن پاسبلٹی تو ہے. جب انہوں نے وہاں سے لیا تو ہم وہاں سے کیوں نہیں لے سکتے؟ بیسک سورسز پہ جانے والا بندہ وہی آگے بڑھتا ہے. ہم جب دوسروں کی سوچ پہ رہتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے ہم خود بھی فائدہ نہیں پاتے. دنیا میں ہم کئی دفعہ یہ ایک دن میں کئی کئی بار کر رہے ہوتے ہیں, نہیں خود اپنے ہاتھ سے کر لو. کسی اور کی سوچ پہ کیا رہنا, یہ میں خود یہ کام کر لوں گی, اور جو بندہ وہ کام کر پاتا ہے وہ پھر دوسروں کا محتاج نہیں رہتا. ہم مسلمان ہیں, ہوا سما کو ملمسلم. یہاں پھر ایک اور بات کہوں, اس موضوع پہ نا ایک سی ڈی ہے بنی ہوئی, تو بہت ڈیٹیل تو نہیں, اس میں بھی اشارتاً ذکر ہوا تھا اپنی قدر پہچانو, ویلیو یور سیلف, آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آن لائن پہ ہے, میں نے کل بھی دیکھی ہے. یعنی یہ جو فرقہ واریت نے گھن کی طرح ہماری امت کو کھا دی ہے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وقت دشمن ہمیں صرف اس لیے مارنے کو تیار ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جب اس کی گولی چلتی ہے نا تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تم سنی ہو کہ شافی ہو کہ وہابی ہو, وہ اس لیے مارتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. اور مسلمان صرف اس لیے آپس میں لڑ رہا ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا. نان مسلم سے ملیں گے تو اتنے پیار سے ملیں گے, اور اپنے ہی مسلمان دوسرے فرقے سے ملے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ناپاک لوگ ہیں. مسجدیں دھوئی جاتی ہیں ایک دوسرے کے نماز پڑھنے پہ, آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یعنی یہ تو ایک ناسور ہے جس نے اس وقت امت کو کھا دیا ہے. آج امت اس تباہیوں کے دور میں گزر رہی ہے کہ اصل کتاب سے دور ہوئے. سب سے بڑا اس کا نقصان کیا ہوا کہ آپ اصل سورسز سے دور ہو گئے. 8 سال کا کورس آپ کے مدرسوں میں کرایا جاتا ہے آپ کو عالم بنانے کے لیے یا آپ کو مفتی بنانے کے لیے, اور اس میں پورے 8 سال میں آپ جو پڑھتے ہیں وہ قال اللہ اور قال رسول نہیں ہوتا, قال ابی حنیفہ, قال ابی حنیفہ, قال ابو یوسف, قال فلاں, قال قال, یعنی آپ کی زبان اس سے اوپر نہیں جاتی. آخری سال میں آپ کو قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھایا جاتا ہے, आपके 8 सालों में पूरी कोई एक हदीस की किताब कोर्स में नहीं होती, इल्ला माशाल्लाह किसी की कोई हो जो मारूफ कुलिये हैं, आपको कुदूरी पढ़ाई जाएगी, आपको हदाया पढ़ाई जाएगी, आपको उसके सिलेक्टेड बाप पढ़ाए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है जो उसकी ठीक चीज़ें आप पढ़ें, लेकिन ये क्यों आप कहते हैं कि जो आपने पढ़ ली इसके अलावा कुछ ना पढ़ें? मुझे तो इस बात से वैसी बू आने लगती है जब कोई ये कहते हैं ना कि ये किताबें पढ़िए इसके अलावा और कोई ना पढ़े। यानी कुछ लोग हैं कहते हैं ये खास हमारी छपी हुई किताबें, इसके अलावा आप कुछ ना पढ़ें, फौरन समझे समथिंग इज रॉन्ग। यानी मैं आपको कहूँ ना कि आप यहाँ आके बैठे हैं, क्लास ले रहे हैं, इसके अलावा अब आप इस शहर में और कोई क्लास ना लें तो आप फौरन मेरे पे शक करिएगा कि ये क्या बात है। अगर आप मेरे साथ लगे हैं ना तो आपको कहीं और नहीं लगना। देखिए आप अपना काम ही ऐसा करें कि कोई जाए ही ना। आप क्यों लोगों को पाबंद करते हैं? आप क्यों लोगों के गले में तकलीद के फंदे डालते हैं? क्वालिटी जीतती है, नाम नहीं जीतते। आप किसी को उसके साथ कसमें हलफ करवा लें ना, किसी से हलफ पुटवा लें कि तुम मेरी मदद करोगे और इससे हटोगे नहीं, तो अगर आप वहाँ उसको फ़ायदा नहीं दे रहे वो हटेगा। मुझे किसी का एक फ़ोन आया कुछ दिन पहले, आने से पहले की बात थी, बहुत परेशान थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी इस तरह हम कहीं पढ़ते थे, फिर क्या हुआ, पढ़ने के बाद ऐसी हम सबकी मीटिंग हुई, सब बैठे, उन्होंने कहा जी के आप बताएं कि आइंदा आप कुछ काम साथ करना चाहते हैं, सो ऑन। हर बंदा जो सीखता है उसका दिल जाता है हम हेल्प करें जिसको फायदा। उन्होंने कहा जी हम करेंगे, हेल्प करेंगे, ये फॉर्म फिल कर दें। कह रही हमें कुछ नहीं पता था ये फॉर्म हमसे क्या फिल कराए जा रहे हैं, फॉर्म फिल कर दें बस, ये कहा आपकी हमारे पास लिस्टें बन जाएंगी। इन्होंने कहा मैंने भी कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये खातून बहुत, मैं जानती हूँ पर्सनली, बहुत अच्छी तरह, बहुत दिल वाली हैं, अल्लाह ने दिल में इनके दर्द रखा है, हर एक की मदद करना चाहती हैं। कुछ पीछे से अपनी माँ के वक्त नाम पे किसी मदरसे की हेल्प भी करती थी, और जहाँ इनको नेकी का मौका मिलता है ना ये फ़ौरन चल पड़ती हैं। इन्होंने किसी महफिल में खड़े हो के, वो किसी पाकिस्तान की ये बात है, करीब का कोई बस्ती थी, तो इन्होंने ऐलान किया कि वहाँ एक मदरसा है, गरीब है और उनको मदद की ज़रूरत है, तो आप मदद करें और जिसको कुछ करना है वो कर दें। अब कहती मुझे क्या पता कि यहाँ जो लोग आए हुए वो क्या सुन रहे हैं। उनमें सुनने वाले लोगों में किसी ने बात आगे पहुँचा दी कि फ़लाँ औरत जो वो तो जी आपके स्कूल की और आपके इदारे से जुड़ी हुई है, लेकिन कल तो ये किसी और के लिए ऐलान कर रही थी। कह रही जो हमारी मैनेजमेंट की जो भी इनकी लीड टीचर थी या वट एवर, उन्होंने इनको बुला लिया कि भाई आपने तो हमारे साथ हलफ बर्दारी की हुई है, तो आप नहीं किसी और को स्पॉन्सर कर सकती, आपको तो हमारे अपने इस नाम को करना चाहिए, अब आपकी पहचान है। इन्होंने कहा क्या, कैसे, क्या हुआ? कहने की हमें पता चला है कि आप दूसरी जगह जाके लोगों को और इदारों के लिए जमा करवा रही हैं और उनको कहती हैं कि आप इस तरह की, लंबी कहानी हुई। अब ये परेशान है, कहती मेरे सर पर जो बोझ है कि वो कहती आपने हल्फ उठाया हुआ है और हल्फ का मतलब कसम होती है, और आप तो गद्दारी करेंगी और आपकी अब सारी हमदर्दियां हमारे इस नाम से हों। कहेंगे मैं अपनी बूढ़ी माँ की जो मेरी दुनिया से जा चुकी है, मैं उसकी नियत से हर महीने कई इदारों में देती हूँ, तो आप कहते मैं सबको छोड़ के सिर्फ आपके इदारे को दूँ? इन लफ्जों से उसका दिल खट्टा हो गया। इतना फायदा उठाने के बावजूद जब आप लोगों को पाबंद करते हैं ना, तो फिर लोग जो हैं वो उस दिन पे नहीं रहते। आप क्यों इस तरह, अल्लाह के नबी ने कभी ऐसी नहीं की। आप सुन सीरत में कल पढ़ चुके, बैत हुई थी, बैत ये नहीं हुई थी कि तुम अपना नाम उम्मत मोहम्मदी के साथ जोड़ोगे, तुम कसम दो तुम यहूदियों में नहीं जाओगे, नसारा नहीं, ये काम करोगे, अल्लाह शिर्क नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। आप अल्लाह लोगों को अल्लाह से जोड़े, आप अल्लाह से जोड़ेंगे वो आपसे भी जुड़ जाएंगे। नतीजा क्या निकला कि दिल बुरे हो गए। तो मैंने कहा आप क्या करें? मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, आपका दिल नहीं मुतमईन इस पर, आप कसम का कफारा दे दें, दैट्स इट। कहती नहीं, फिर हमें ये हदीस सुनाई जाती है कि अगर आप जमात से अलग हो जाते हैं तो आपको जहालत की मौत मरेंगे। एक हदीस है जिसको इतना मिस इंटरप्रेट किया जाता है, शायद आपने भी कभी सुनी हो, कि जिसने अपने गले से जमात का फंदा उतार दिया वो जहालत की मौत मरेगा। तो मैंने कहा उस हदीस को पूरा कभी आपने सुना? कह रही नहीं। मैंने कहा मुझसे सुने उस हदीस के आगे क्या है, कि जिसने तासुब की पुकार लगाई उसने जाहिलियत की पुकार लगाई। कह रही ये तासुब क्या होता है? मैं कह तासुब यही होता है कि मेरी जमात, मेरा ग्रो, मेरा कुंबा, यही बस अच्छा है, बाकी अच्छा नहीं। कहती देखे, यानी आधी हदीस बहुत कोट होती है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले आइमाए कराम, उनकी इज्जत सर आंखों पे, इमाम अबू हनीफा, ये इन सब के नाम ले लेके हमें मोहब्बत आनी चाहिए। लेकिन ये ऐसे ही इमाम है जैसे आज इमाम काबा होंगे, आज जैसे सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हर दौर में हर शहर में इमाम होते हैं, आपके मस्जिदों के लोग जो आपकी खिदमत करते हैं, जो आपको दीन सिखाते हैं, ये आपके इमाम हैं। हर बंदा अपने हिस्से का काम कर रहा है। किसी को उर्दू जुबान में अच्छा लगा वो उर्दू में कर पा रहा है, कोई बेचारा इंग्लिश में कर रहा है, इंग्लिश में कर रहा है, कोई फ्रेंच में कर रहा है। आप उनसे फ़ायदा लें, फूल है उसकी खुशबू सूंघें, आपको जो खुशबू अच्छी लगती है लेते जाएं, लेकिन आप अपने आप को एक चीज़ के साथ जोड़ के कहें कि इससे बाहर नहीं जाना, तो फिर मान जाइए कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी से वो काम नहीं हुआ जो हमारे आइमा कराम ने कर दिया। कई मुगालते हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं सवाल, इसीलिए मैं साथ साथ जवाब दे रही हूँ, जो लोग देते हैं जी नहीं हदीसें तो बहुत सारी होती हैं, उलझी होती हैं, बहुत बिखरी बिखरी हैं और इससे हमें अमल मिलता है और ये काबिल अमल है बातें। भाई इसका मतलब ये है कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के भी बड़े डिसऑर्गेनाइज थे, वो तो इल्म को इस तरह पाइल अप कंपाइल नहीं कर सके कि आप और मेरे जैसे लोग अमल करें, तो बाद में लोगों ने इस पर अमल कर लिया। जी आप बताए कौन कहता है ये? बस आप अल्लाह से दुआ करें कि आपके नसीब जाग जाए, दुआ करें कि एक दफा सूरत फातिहा से सूरत नास तक कुरान पढ़ लें, आप कोई ऐसा बंदोबस्त करें, यकीन करें आपको जमीन पर बैठना पड़ा हम बैठ के पढ़ने को तैयार हैं। एक दफ़ा अरेंज कर लें कोई चीज़ कि आप भी और आपके बच्चों में जो लड़कियां फारिग हैं बैठ के सिर्फ कुरान के हर लफ्ज़ को उसकी कुरान और सुन्नत की रोशनी में पढ़ लें, आपके ये सारे सवालों के जवाब आएंगे। यकीन करें मेरा दिल रोता है इस बात पे, मैं कहती हूँ लोग कहाँ जा रहे हैं, लोगों को इतनी बेहयाई है, इतनी बुराई है, आप तो यहाँ छुपे बैठे हैं, आप अपने मुल्कों में फ़ोन कर लें तो आप कहते हैं वहाँ इतनी बेहयाई है, आप वेस्टर्न कल्चर्स को देखें तो आप कहते हैं नस्लें भाग रही हैं, लड़कियां भाग रही हैं, लड़के चले गए, मर्द जो हैं वो घरों में नहीं है, बीवियां रो रही हैं, मर्दों की निगाहें कहीं हैं, कहीं इकोनॉमी डूब गई, कहीं कुछ, ये सारे मसले क्यों हैं भाई? एक ही वजह है कि जो अल्लाह की किताब को छोड़ता है ना, फिर अल्लाह उसको दुनिया में भटकने के लिए छोड़ता है। ये अजाब आए हुए हमारे ऊपर, ये बेहयाई का अजाब है, ये हमारे ऊपर बुरी औलादों का नाफरमान होना अजाब है, हमारे पेट में जो जाता है हमें नहीं पता वो किस तरह का जा रहा है। तो इसका इलाज बातें नहीं है, नारे नहीं है, कोई जोश लोगों को दिला के घर जाके सो जाना ये नहीं, हम भरपूर तकरीरें करते हैं, खूब आके मार डाइस पे मुक्के मार के बातें करते हैं और बाद में कहते हैं रात को हमें मेहंदी में जाना है। यानी आप देखिए कि उम्मत की हालत नहीं बदल सकती जब तक हमारे अंदर ये ख्याल और ये शौक नहीं आ जाता कि हमने अल्लाह के नबी के तरीके से दीन को लेना है। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह मक्की दौर मदनी दौर शुरू हो रहा है, आपके ऊपर एक नया चैप्टर खुलेगा, कैसे किसी जगह को दीन के लिए आबाद किया जाता है। आज भी यकीन करें ये वीरान बस्ती हैं, दुनियावी तरक्कियों के आला मुकाम पे क्यों नहीं आज हमारे घर में दुनिया की हर नेमत और हर मशीनरी क्यों नहीं, लेकिन वो जगहें वो बस्तियां जहां अल्लाह का नाम नहीं वो बिल्कुल वीरान है, मुर्दा बस्ती हैं, वहां आपने कुरान के और इस्लाम के बीज डालने हैं। जी देखिए मक्की दौर तो आप सीरत का पढ़ ही चुके हैं ना तकरीबन, आपने अभी तक कोई एक ऐसी बात पढ़ी कि अल्लाह के नबी बैठे हैं और सहाबा बैठ के आपकी जुल्फों के किस्से गा रहे हैं, आपकी आंखों की बातें कर रहे हैं? मेराज का वाक्य हमने पढ़ा ना, आपको कोई उसमें एक भी लगा कि आपने अगले दिन बैठ के कहा कि आओ बैठो मैं तुम्हें सुनाता हूँ और तुम मेरी बातें सुनो? आज जो मेराज के मौके पर रातों को नात ख्वानी होती है कभी आप सुने, शिर्क से भरी हुई होती है। बस आप अपने लिए दुआ करें, मैं तो कहती हूँ आप सबको छोड़ दें, जितने आप लोग बैठे हैं ना यकीन करें अगर आप बच्चियाँ 1-1.5 साल के लिए अपना स्कूल छोड़ देती हैं ना, आप वो रहमत की बारिश बनेंगे अपने इलाकों के लिए कि जो शायद आपकी महीने की 20-25 हज़ार की पे भी नहीं वो फ़ायदा दे सकती अपने घर वालों को। रिक्वेस्ट कर लें, ख्वाहिश कर लें, तड़प पैदा करें कि एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में इस कलाम को सीखना है, और आपको जो सिखाएंगे आपके सामने होगा कि ये कोई किसी फिक की रोशनी में या किसकी रोशनी में, ना किसी मसलक की रोशनी में ना किसी जमात, आपकी सारी हमदर्दियाँ अल्लाह के दीन के साथ होंगी, ना कोई नाम है। आपने एक दफ़ा भी यहाँ बैठ के किसी इदारे का नाम सुना कि आपको कहा आप उस इदारे से जुड़ें? नूरुल कुरान का लफ्ज़ भी शायद मेरा नहीं ख्याल आपने कॉन्शियसली मेरे से सुना हो। कभी आपको फील हुआ यहाँ आके कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे रुकन बने या आप हमारे साथ जुड़ें? एक ही बात है, एक दफ़ा मैं कहीं थी, मैं आपको वाक्य याद आ गया, मैं किसी ट्रिप में थी, स्टूडेंट थी एक, उन्होंने बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ था, यानी आप ये कह लें कि जिसको हमारे यहाँ कहते हैं तिल धरने की जगह नहीं, उसका ऊपर नीचे घर भरा हुआ था और खुश थी जोश में थी, फिर जब दर्स ख़त्म हुआ माइक पे आई, आप प्लीज़ आप लोग नूरुल कुरान से जुड़ें, उसने ये बात कही, आप आए देखिए आपको पता है कितना अच्छा पढ़ते हैं ये वो, मैंने उसके हाथ से सबके सामने माइक लिया, ऑनलाइन भी आ रहा था प्रोग्राम, मैंने कहा देखिए मैं इस बच्ची की बात की सलाह करूंगी, इसने आपको कहा कि आप नूरुल कुरान से जुड़ें, मैं आपको कहती हूँ आप कुरान से जुड़ें, नूर खुद ही आ जाएगा। मैंने कहा हमारी दावत नूरुल कुरान की नहीं है, हम किसी जमात से नहीं बुलाते आपको, हम कहते हैं हम कुरान से जुड़ जाएँ। हम जब तक ये नामों के उलझनों में पड़े रहेंगे ना, देखिए हम करते हैं शुरू अल्लाह के दीन का नाम काम और बाद में वो बन जाता है हमारा नाम, آج امت مسلمہ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت بڑا ہے، جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں، لیکن آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حق دکھا۔ ایک دعا سکھاتی ہوں آپ کو بھی، اگر آپ اپنے لیے پڑھیں، کبھی بھی پڑھنے بیٹھے نا تو یہ دعا پڑھ کے بیٹھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت سے سکھائی ہوئی دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا، یعنی حق مجھے حق ہی دکھے، اور مجھے اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو میری نظروں میں باطل کر کے دکھا، اور مجھے اس سے اجتناب کی توفیق دے۔ میں نے اپنے قرآن پاک کے باہر بالکل جو مین پیج ہے نا، وہاں ایک سٹیکی نوٹ پہ یہ دعا لکھ کے لگائی ہوئی تھی، جب کبھی میں بالکل اپنے ارلی اسٹوڈنٹ ایج میں تھی، کہ اللہ اس دین کے نام پہ بھی جو سنوں تو حق دکھانا۔ یقین کریں کہ دنیا کے ناطے سے تو لوگ بیچارے بھٹکے ہوئے ہوتے ہی ہیں، مجھے اس ان پہ تو ترس آتا ہے، ان سے تو مجھے پیار محسوس ہوتا ہے، لیکن جو دین کے نام پہ بھٹکتے ہیں نا، ان کے لیے میرا دل روتا ہے۔ اور اپنی دعاؤں میں یہ شامل کیا کریں کہ اللہ دنیا میں تو ہم تھے ہی بھٹکے ہوئے، خواہشوں کے غلام تھے، معاشرے کے غلام تھے، برادریوں کے غلام تھے، لیکن اب دین کے نام پہ حق دینا، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں، ہماری اتنی زندگیاں ہی نہیں ہیں کہ ہم تجربے ہی کرتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، آج دین کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، لوگ ساری زندگی ایکسپیرینسز میں گزار دیتے ہیں اور اینڈ آف دا ڈے نکلتا کیا ہے۔ آپ نے ایک بہت معروف اسکالر ہے، ان کا یہ جملہ بہت مشہور ہوا تھا، ایک میگزین میں بھی آتا، انور کشمیری، شاید آپ نے ان کا نام سنا، بہت فقہ حنفی کے بڑے امام تھے، الحمدللہ ان کی خدمات ہیں، بہت کچھ کہانی تھی، لیکن جب اپنے بالکل قریب تھے اپنے، یعنی انہی کی کہانی ہے یا ان کی زبانی کسی کی، اس وقت مجھے یاد نہیں، میں اپنے حافظے سے سنا رہی ہوں یہ بات، تو بہت پریشان تھے، جب ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو کہنے لگے کہ بھائی دوست، ہم نے تو زندگی خراب کر دی، زندگی ضائع کر دی۔ تو لوگوں نے ان کے منہ سے یہ بات سن کے کہا کہ بھائی آپ کی اگر زندگی ضائع ہوئی ہے تو پھر ہماری زندگیوں کا کیا معاملہ ہے، آپ نے تو ساری زندگی دین کی خدمت کی۔ تو کہنے لگے کہ دین کی نہیں خدمت کی، فقہ حنفی کی خدمت کی ہے، ہماری تو ساری گفتگوں، ساری دعوتوں اور سارے درس و تدریس کا ایک ہی خلاصہ تھا کہ فقہ حنفی کی فوقیت دوسری فقہات کے اوپر ڈال دیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی فقہ حنفی کی خدمت کی ہے، دین اسلام کی نہیں کی۔ آپ سوچئے یہ باتیں کیا ہیں، کہ میں سوچتی ہوں کہ جب انسان اکیلا بیٹھتا ہے تو اس کا دل اس کو بتاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بعض چیزیں لوگوں کے دل مان جاتے ہیں لیکن وہ دوسروں کے سامنے اس کا اقرار نہیں کرنا چاہتے۔ مکہ والوں کے دل مان چکے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو، ان کو پتا تھا یہی ہے وہ رہنما جس کے ہاتھوں میں اب ہمارا مستقبل ہے، لیکن کہتے تھے ہو توبہ توبہ، ہم نہیں مانیں گے، خام خواہ اس کی بات مان لی تو ہم نیچے ہو جائیں گے۔ اتباع سنت کے مسائل بک میں سے ہم آئیے اگلی آیت باتوں کو دیکھتے ہیں کہ ائمہ کرام جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کیا مقام دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حدیث پر عمل کرنا ہدایت ہے، اور حدیث کے برعکس عمل کرنا گمراہی اور فساد ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، لوگ اس وقت تک ہدایت پر قائم رہیں گے جب تک ان میں علم حدیث حاصل کرنے والے موجود رہیں گے، جب حدیث کے بغیر دین کا علم حاصل کیا جائے گا تو لوگوں میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ شارانی نے اس کو میزان، یعنی یہ میزان کتاب کا نام ہے، اس میں ذکر کیا۔ سنت رسول کی موجودگی میں رائے دریافت کرنے والے کو امام مالک رحمہ اللہ کی فتنے میں پڑنے یا عذاب میں مبتلا ہونے کی تنبیہ۔ ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا، کوئی مسئلہ دریافت کیا، امام صاحب نے بتایا کہ اس بارے میں رسول اللہ کا ارشاد مبارک یہ ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یعنی حدیث سن لی، پھر کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں۔ امام مالک نے جواب میں یہ آیت تلاوت کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ سورۃ نور کی آیت ہے، غالباً 63 نمبر کی آیت ہے، اور یہ روایت شرح السنہ میں ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ اب حدیث کے بعد کہنا، یہ ٹھیک ہے حدیث تو ہے، اب آپ کا کیا فتویٰ ہے، آپ کی کیا رائے ہے، تو دین میں رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ राय तो यही है कि हर बंदा अपनी मर्जी से कुछ भी कहे, तो लिहाजा सही हदीस के मुकाबले में दूसरी बातें जो हैं वो उसकी अहमियत नहीं रहती। सुन्नत रसूल के बारे में इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के बाज़ अक़वाल, इस बात पर तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है कि जिस शख्स को सुन्नत रसूल मालूम हो जाए, इसके लिए किसी आदमी के कौल की खातिर सुन्नत को तर्क करना जायज़ नहीं। इब्ने क़य्यम और फ़लानी ने इसका ज़िक्र किया। जब मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के ख़िलाफ़ बात करते देखो तो समझ लो मेरा दिमाग चल गया है। इब्ने अबी हातिम और इब्ने इसाकर की रिवायत, ये अपने बारे में कह रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कह रहे, हम आज यही बातें दूसरों के लिए कहते हैं। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब सही हदीस मिल जाए तो मेरा वही मज़हब है। नीस फरमाया, जब मेरा कॉल हदीस के ख़िलाफ़ पाओ तो हदीस पर अमल करो और मेरा कॉल दीवार पर दे मारो। इसका ज़िक्र अकदुल जैयत में है, ये किताब का नाम है। ये सब अरबी की किताबें हैं इसलिए नाम थोड़े से आपको अनफेमिलियर लग रहे हैं। देखिए कि वो कह रहे हैं कि मेरे कॉल को छोड़ दो, तो इससे आपको लग रहा है ना कि आइमा कराम का मसलक क्या था। कोई ये भी तो पूछे कि आइमा कराम का अपना मसलक क्या था। कोई एक रिवायत मिलेगी आपको कि इमाम अबू हनीफा कहें कि मेरा मसलक हनफी है। और आपको पता है कि ये जो टर्म्स शुरू कैसे हुई थी, ये पहले दौर का रिवाज था कि लोग उस्ताद के नाम पे उनको मंसूब कर देते थे। जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट जगहों में रहने वाले लोगों को उससे निस्बत दे दी जाती है ना, मतलब कोई लाहौर में रह रहा है तो उसको लाहौरी कह देंगे, सियालकोटी का लफ्ज़ बोल दिया जाता है, ये निस्बत होती है। उस दौर में क्या होता था कि लोग जिस उस्ताद से पढ़ते थे ना, तो मोहब्बत की वजह से उसको उसके नाम से मुखातिब करते। मसलन जो दौरे कदीम के जो हनफी थे ना, वो कौन हनफी थे? जिन्होंने इमाम अबू हनीफा से सीखा। वो हनफी नहीं थे जो आज के दौर में कि इमाम अबू हनीफा की बात को लेंगे और किसी और को नहीं लेंगे। मालिकी वो थे जो इमाम मालिक से फ़ायदा लेते थे। आज भी दुनिया में इस तरह की कुछ हैं सनदें के जिसमें आपको इदारों या उन जगहों की तरफ जोड़ दिया जाता है। तो बहरहाल इनका मज़हब जो है बहुत वाज़े था। इमाम अहमद बिन हम्बल किसी आदमी के कौल की खातिर सुन्नत रसूल को तर्क करना हलाकत का बायस समझते थे। फरमाते, जिसने रसूलुल्लाह की हदीस को रद्द कर दिया वो हलाकत के किनारे पर खड़ा है। इसका जिक्र इब्न जौजी ने किया। इमाम अहमद फरमाते हैं, इमाम औज़ाई, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा में से हर एक की बात राय है और मेरे नज़दीक सबका एक जैसा दर्जा है, हुज्जत सिर्फ सुन्नत रसूल है। इब्न अब्दुल बर ने जामे में इसका जिक्र किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरह सदर है कि ये लोग सही अकीदे पे थे और आज भी इंशाल्लाह ताला इनकी तालीमात से फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन किसी एक के साथ अपने आप को जोड़ के बाकी के इल्म को ज़ायल कर देना या बाकी समझना, देखिए कैसे ही है कि जैसे आप एक चीज़ के चार टुकड़े करें, रोटी है ना, आप उसके चार टुकड़े करें, अब आप कहते हैं बस मुझे एक ही टुकड़ा चाहिए, तो आपने तीन ज़ाया कर दिए ना। जब आप एक इमाम को लेते हैं तो तीन इमामों के टुकड़ों को छोड़ देते हैं ना। अल्लाह के नबी की एक हदीस, आप इसको बल्कि ख़ुद भी याद कर सकते हैं, बड़ी प्यारी सी छोटी सी हदीस है ना, कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन दलालतुन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। दीन में हर नई चीज़ बिदत है और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना आग है। ये निसाई की रिवायत है। और अल्लाह के नबी सल्लम अपना जो कलाम या कोई अपनी स्पीच कोई बात शुरू करते थे तो उससे पहले ये बात पढ़ते थे।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد